ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं दैवी तथा आश्री स्वभाव अध्याय 16 श्लोक क्रमांक 1 से 3। आवृत्ति करेंगे। श्री भगवान वाच, अभयं सत्व संशोधे ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोधः त्यागः शान्तिरपैसुनम् दया भूतेष्व लोलुप्त्वम् मार्दवं हरिरचापलम् तेजः शमाधृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। अब मैं इस श्लोक को लेकर क्यों उत्साहित हूँ, क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो श्रील बलदेव विद्याभूषण समझाते हैं उसको आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो पहला श्लोक है उसमें पहली लाइन है, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति। ये सन्यासियों का गुण है, आप मार्क कर लीजिएगा इस चीज को। जो पहली लाइन है वह सन्यासियों का गुण है। उसके बाद दानम दमश्च, ये है गृहस्थों का, क्षमा कीजिएगा, दानम जो है वो गृहस्थों का है, और दम यज्ञ ये जो है ये वानप्रस्थों का है, ये भी आगे बताएंगे। स्वाध्याय है, मैं गलत बोल गया, दान दम और दमन और यज्ञ ये है गृहस्थों का, स्वाध्याय है ब्रह्मचारियों का, और तप है वानप्रस्थों का। ये पहली दो लाइन में हमको समझ में आ रहा है, ये सारी जो है दैवीय गुण है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब कोई व्यक्ति वर्णाश्रम का पालन करता है ठीक, तो स्वाभाविक रूप से उसमें दैवीय गुण आने लग जाते हैं। उसकी शुरुआत कहां से होती है? ब्रह्मचारी आश्रम में, वहां पर स्वाध्याय करता है, वेद अध्ययन करता है, तो जीवन के मूल्यों को ठीक से सीखता है, ज्ञान अर्जित करता है। फिर जब वो गृहस्थ आश्रम में जाएगा तो वो करेगा, दान करेगा, इंद्रियों को संयम करेगा और यज्ञ करेगा। समझ में आ गया? फिर जब वो वानप्रस्थ में जाएंगे तो तप करेंगे, तप करने से क्या होगा, सत्व शुद्धि संशुद्धि हो जाएगी, चित्त शुद्ध हो जाएगा, समझेगा कि भाई मैं आत्मा हूं, भगवान मेरे मालिक है, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। तो इस प्रकार से आप रिलेशन देख पा रहे हैं, ब्रह्मचारी से शुरू होकर के, स्वाध्याय से शुरू करके, वेद अध्ययन से शुरू करके, फिर अगर मान लीजिए कोई ग्रेजुअली गृहस्थ आश्रम में जाता है, दान दम यज्ञ करेगा, उसके बाद वानप्रस्थ क्या गुण देखा हमने, तपस्या, उसके बाद बाकी चार जो गुण है वह सन्यासी के। ये एंगल मैं देख पाया था स्टीका से, इसलिए मैं बड़ा खुश हुआ था देख करके। हाँ पूछेगा, पूछेगा तो माइक पे पूछेगा। यस
भगवान, फिर भगवत गीता में ये भी तो कहते हैं यज्ञ दान तपस्या, ये तीनों कभी सबको करने
सभी के लिए, लेकिन इस कंटेक्स्ट में यहाँ पे पर्टिकुलरली उसके उनके लिए, गृहस्थों के लिए है। और दूसरा बात है कि यज्ञ दान तपस्या सबके लिए अलग अलग प्रकार का, ब्रह्मचारी दान कैसे कर सकते हैं, दान नहीं यज्ञ, उनका यज्ञ जो है वो कहां से सुन के आ रहा है, ब्रह्मचारी के पास तो पैसे नहीं, दान कैसे करेगा। तभी अभी ये शिल्दे, और जो भी तपस्या है उसकी उसकी तपस्या क्या है, गुरु के घर में दासवत रह करके सेवा करे और वेद अध्ययन करे। तपस्या का स्वरूप अलग अलग है, लेकिन ये मुख्य चीजें, मतलब ये इसका फोकस है, वानप्रस्थ का फोकस है। अब आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि आप कहेंगे वानप्रस्थ का फोकस क्यों है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। गृहस्थ आश्रम में भोग का लाइसेंस मिलता है, तो भोग के संस्कार वो अर्जित कर लेते हैं, तो उसकी सफाई होना बहुत जरूरी है, तब वो सन्यास के अधिकारी होंगे। इसलिए तपस्या बहुत बड़ी फोकस है वानप्रस्थ जीवन में। तपस्या फोकस ब्रह्मचारी में नहीं, ब्रह्मचारी जीवन में है स्वाध्याय, वेद अध्ययन, ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, ताकि आगे के आश्रमों में उस ज्ञान के अनुसार जो उसने सुना है वह कार्य कर सके। समझ में आ गया आपको? अब आप देखेंगे अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिर अपैशनम दया भूतेषु लोलुप्तवम माधवम हीर चापलम, ये ब्राह्मणों का गुण है। यानी कि हमने भी कौन से गुणों का चर्चा किया था, आश्रमों का, अब वर्णों के गुणों के बारे में आ रहा है। ये सारे गुण ब्राह्मणों के, पूरे दो गुण दो लाइन में खाली ब्राह्मणों के गुण बताए गए हैं। उसके बाद तेज क्षमा धृति, ये है क्षत्रियों का। शौचम अद्रोह, ये है वैश्यों का। और न अति मान्यता, अपने लिए बहुत अधिक मान के सम्मान ना करना, ये शूद्रों के लिए है। तो अब देख, एक बहुत सुंदर बात यह है, अभी हम जब चर्चा करेंगे टीका से तो आप समझ जाएंगे वो, कि जो व्यक्ति जिस आश्रम में है अगर उस गुण, उस मुख्य गुण को, जैसे यहां पे शूद्रों के लिखा है न अति मान्यता, हम्बल नम्र रहते हैं, तो वो गुण उनको दिव्य स्तर पर लेके चला जाएगा। अभी हम उसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत सुंदर बात है। पहले मनवाद प्रभुपाद जी का पढ़ते हैं, फिर तात्पर्य भी बाद में पढ़ेंगे प्रभुपाद जी का। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। पहले अनुवाद करते हुए बोलने का प्रयास करूंगा। पहला बात ये बोल रहे हैं कि 16वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण असुरों का गुणों का वर्णन कर रहे हैं और देवताओं के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, और वो ये भी बोल रहे हैं कि ये जो सारे गुण हैं वो बहुत सुंदर हैं और बाकी जो राक्षसी गुण हैं वो बहुत खराब हैं। हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट बात ये है, ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है। इस जगत को या हमारे जन्म मृत्यु के चक्र को अश्वत्थ वृक्ष से इसकी उपमा दी जाती है। अश्वत्थ का मतलब है बरगद का वृक्ष। तो अब इसमें जो अच्छे संस्कार हैं जीव के ऊपर, जो उसने अच्छे कर्म किए हैं उसकी वजह से अच्छा संस्कार आया है, वह दैवीय गुणों से उसकी उपमा दी जा रही है। कोई व्यक्ति आज अच्छा कार्य कर रहा है तो वो आगे भी अच्छा कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि उस अच्छा कार्य करने का संस्कार उसके मन में है। दान कर रहा है आज तो ऐसा नहीं कल वो कृपण हो जाएगा, वो दान करने का जो कार्य है उसके ऊपर एक छाप मार रहा है। ठीक है, वो जो छाप मार रहा है वो आगे उसी को, उस छाप के कारण, संस्कार के कारण व्यक्ति वैसे ही कार्य करेगा। समझ में आ रहा है? 15वें अध्याय से कनेक्शन आप देख सकते हैं, 15वें अध्याय में भगवान ने बताया था। और इस प्रकार के जो कार्य हैं, ये जो संस्कार हैं, व्यक्ति के मुक्ति के कारण बन जाते हैं, इसलिए सब वर्णन कर रहे हैं। जैसे आप देखिए, बहुत थोड़ा विनोद की बात है, जब ये सारे गुणों का वर्णन हो रहा है तो आप लोगों को क्या लग रहा है, ये गुण हमारे अंदर आने चाहिए ना? और ऐसा तो नहीं जब असुरों के बारे में बताया जाएगा तो कहेंगे अरे वाह, दम्भोदर अभिमान चाहिए, आना चाहिए था, तो ये तो नहीं आ रहा है। तो देख रहे हैं कि भक्ति कर रहे हैं तो अच्छी गुण आने की इच्छा तो हो रही है ना। ये भी इसलिए क्योंकि अभी से अंदर में अच्छी गुण है, इसलिए उसको और वर्धन करने की इच्छा हो रही। आप समझ पा रहे हैं, ये संस्कार की वजह से, ये भक्ति का संस्कार है, इसकी वजह से व्यक्ति, या अच्छे संस्कार, अच्छे काम करने के संस्कार है, उसकी वजह से लोगों के मन में इच्छा आती है अब इसको और बढ़ाने के लिए। और उसका विपरीत भी ट्रू है, अगर राक्षसी कार्य किए हैं तो फिर वैसे इच्छा होगी और हम अहंकार को बढ़ाएंगे, ऐसे कर। पूछिए माइक में। यस,
ये सब सत्वगुण के लक्षण है ना सिर्फ?
यहां भगवान क्या बोल रहे हैं?
दिव्य
दिव्य दिव्य गुण है, यही बात अब क्लियर किया जाएगा उसमें, कि वर्णाश्रम का पालन करते हुए भी व्यक्ति भक्ति को धारण करने के लिए योग्य हो जाता है,
क्योंकि इन सारी क्वालिटीज में कहीं भक्ति के बारे में नहीं।
और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है, अगर आप कह रहे हैं भक्त के बारे में नहीं आ रहा है तो आप अभी तो आ जाएगा आगे, भगवान इसको बोल रहे हैं। Let's see, टेक्स्ट नंबर 5 में, माशचः संपदम दैवीम अभी जातोसि पांडव, क्योंकि तुम हे पांडु पुत्र, तुम चिंता मत करो क्योंकि तुम देवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वेर गुणस्तत्र समासते सुरा हरव भक्त सुकुतु महत गुणा मनोरथे स्थास्ते धावतु। भाई, सारे देवताओं के गुण भक्त में होते हैं प्लस और भी होते हैं, जो भगवान के गुण है वो भी होते हैं। देवता सभी को पसंद नहीं करते, ये गुण भी भक्त में होते हैं लेकिन देवताओं के सारे गुण भी होते हैं।
इसमें जो जैसे लिखा है
माइक पे पूछिएगा
कि इन सब जैसे सारे गुण बताए गए हैं हाँ। तो अभिलाषा से मुक्ति की इनकी अभिलाषा से मुक्ति ये सारे दिव्य गुण है।
अभिलाषा से मुक्ति, सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, न कि इन गुणों की अभिलाषा से मुक्ति।
नहीं हाँ? देखो इसमें यहाँ तक आया पवित्रता ईर्ष्या तथा सम्मान के अभिलाषा से मुक्ति
हाँ
तथा भी है ना बीच में
हाँ।
तो ये सारा मिक्सअप है ना।
मिक्सअप का मतलब
इकट्ठा ही है ना।
नहीं नहीं लग रही है अभी ये एक ठीक है। ये सारे दैवीय गुण हैं लेकिन ये अलग अलग आश्रमों के लिए। जैसे कि किस अब ये मैं जब समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। कोई मान लीजिए ये अच्छा प्रश्न है कि नहीं। प्रश्न बहुत अच्छा किया है। प्रश्न ये कह रहे हैं कि सारे दैवीय गुण हैं तो हम ये सोचेंगे कि एक ही व्यक्ति में सारे गुण आने चाहिए ना। ना 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 क्योंकि देखिए अगर आप कहेंगे कि ब्राह्मण का गुण नेसेसरली क्षत्रिय में आए तो ये सही नहीं बोला जाएगा। यही आचार्य बताएंगे इनमें से ये जो अलग अलग आश्रमों के अलग अलग गुण हैं जो व्यक्ति जिस स्थिति में है अगर उस गुण को वो कल्टीवेट कर रहा है। कल्टीवेट मतलब उसका कल्टीवेट का मतलब अनुशीलन कर रहा है तो उसको वो वही व्यक्ति गुण दिव्य बना देगा। जैसे स्वाध्याय अगर ब्रह्मचारी के लिए है तो ब्रह्मचारी के लिए दान नहीं बोला जा रहा है। दमन का मतलब समझते ना। इंद्रियों का संयम वो क्या होता है आगे बात आ जाएगी। भाई इंद्रियों के संयम के बारे में बात आएगी कि केवल पत्नी से तभी संग करना जब संतान उत्पत्ति की इच्छा हो। तो ये क्या ब्रह्मचारी के लिए अप्लाई एप्लीकेबल है? तो है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं ब्रह्मचारी मतलब वो तो ऑप्शन ही नहीं है ना। तो इसलिए जो गुण जिस आश्रम वर्ण का है उसका अनुशीलन करे तो पार हो जाएगा। ये मुख्य बात है जिस कारण से मैं उत्साहित हूं इस चर्चा करने के लिए। ठीक है ओके। ये हमने चर्चा कर लिया कि जो ये जितने भी दिव्य गुण हैं या दिव्य संस्कार हैं इनको दैवी संपद कहा जाता है। संपद मतलब समझते हैं आप लोग संपदा संपत्ति। तो ये संपत्ति है। एक ऐसा इंटरेस्टिंग बात है कि धन को संपत्ति नहीं बोल रहे, इन गुणों को संपत्ति बोल रहे। ये बहुत सुंदर बात है भगवान। और असुर संपत्ति के बारे में आगे चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं हाँ अब हम इन गुणों के शब्दों की व्याख्या करेंगे। जैसे आचार्य बता रहे हैं वो कहते हैं सबसे पहले वह सन्यासी के बारे में बात करते हैं। हमने आपको बताया था ना सन्यासी के गुण कौन से। फर्स्ट लाइन समझ में आ गई। तो उसमें बोल रहे हैं यानी कि प्रभुपाद भी इस बात को बोलेंगे एकदम स्पष्ट। अभयम का मतलब है व्यक्ति को चिंता नहीं करनी चाहिए कि अगर वो अकेला रह रहा है और कोई काम नहीं कर रहा है तो उसका पेट कैसे पलेगा। समझ गए। संन्यास मतलब केवल कृष्ण की सेवा कर रहा हूं, मैं अकेले रहूंगा और काम नहीं करूंगा तो कैसे पेट पलेगा। जिसके मन में ये चिंता है उसको संन्यास करने का अधिकार नहीं है। ठीक है। अब ये क्यों अभय आ रहा है उसका नेक्स्ट शब्द से अर्थ है सत्व शुद्धि। सत्व मतलब हृदय चेतना। जब चेतना शुद्ध होगी तो सहज रूप से श्रद्धा होगी। अरे भाई कृष्ण सबको खिला रहे हैं तो एक शरणागत भक्त को क्यों नहीं खिलाएंगे। क्लियर है? ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं होगी ना। अब एक और इसमें वो बोल रहे हैं कि उसका मन शुद्ध क्यों हुआ है क्योंकि उसने वर्ण और आश्रम की कर्तव्यों को किया है। आपको याद है मैंने सीक्वेंस बताया था ना स्वाध्याय दान दम यज्ञ फिर तपस्या। अब उसका चित्त शुद्ध हो गया इसलिए वो अभय निश्चित हो गया। अगर हमको साक्षात्कार हो जाए कि हम आत्मा है तो फिर डरने की क्या जरूरत है। तो इस उम्मीद है कि आप इस फ्लो को समझ पा रहे होंगे। उसके बाद उन्हें पूरा ज्ञान है क्योंकि वह ज्ञान योग व्यवस्थित थी अर्थात उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है श्रवण। प्रभुपाद भी इस बात को बोलेंगे। ज्ञान का मुख्य तरीका है श्रवण। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर प्रचार नहीं कर सकता सन्यासी तो कम से कम एक जगह बैठ के गुरु से सुने। आगे आप देखिएगा तात्पर्य। सुनने के द्वारा ही व्यक्ति का चित्त स्थिर होता है। जैसे चतुर महाप्रभु जो सन्यास लेकर के जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं तो जगन्नाथ जी को देख के बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद उनको लेकर के सार्वभौम भट्टाचार्य अपने घर पे लेके आते हैं। जब उनको होश आता है तो कहते हैं इनको मैं वेदांत सुनाऊंगा। तो क्यों सुनाएंगे वेदांत? क्योंकि ये बहुत यंग हैं और ये बहुत सुंदर हैं तो अपने सन्यास धर्म का पालन कैसे करेंगे। तो आप समझ पा रहे हैं वेदांत सुन करके भागवत सुन करके उनका चित्त जो है भागवत तो नहीं सुनाया था उन्होंने वेदांत सुन करके व्यक्ति का चित्त जो है इस जगत से निवृत्त होता है। तो सन्यासियों के लिए मुख्य है धर्म की वो वेदांत को सुनते हैं इस प्रकार से ताकि उनका मन वैराग्य में स्थित रहे। क्लियर हो गया? तो ज्ञान योग व्यवस्थिति का अर्थ क्या है? अभी तो बोला, अभी बोला क्लियर हो गया, पर बोल नहीं पा रहे। ज्ञान योग व्यवस्थिति का अर्थ क्या है? ज्ञान योग व्यवस्थिति का अर्थ है ज्ञान योग का अनुशीलन करें। तो हम फिर से रिवाइज कर ले, अभय मतलब ये चिंता नहीं है कि मैं काम नहीं कर रहा, अकेले रहूंगा तो कौन पालन करेगा। और ये कैसे आता है? सत्व संशुद्धि से। सत्व का मतलब चेतना, हृदय। और ये सत्व संशुद्धि क्यों हुई है ना? संशुद्धि इसलिए हुई है क्योंकि इससे पहले उसने वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन किया, और जब वो संन्यास में आ गया तब तो ज्ञान योग व्यवस्थिति। और कुछ काम नहीं है, केवल वेदांत और सब भागवत पढ़े, उसमें अब्सॉर्ब हो जाए, वो कोई काम
उसको। तो क्या मतलब?
माइक पे पूछिए। यस,
सारे फिर व्यक्ति को आश्रम में जाने की आवश्यकता है फिर?
जनरली स्पीकिंग, ये अच्छा प्रश्न है, क्या लोगों को सारे आश्रम क्रॉस करने की जरूरत है? यस, जनरली स्पीकिंग, क्योंकि ऐसा नहीं कि सारे लोग तुरंत वैराग्य आश्रम में चले जाएंगे। जिसको वैराग आश्रम में जाना है वो कभी गृहस्थ आश्रम में जाएगा ही नहीं। वैरागी बनाए नहीं जाते, वो पहले से, उनके भी संस्कार पहले जन्मों के होते, तो इस प्रकार से उन लोगों का पहले से मन नहीं हुआ कि हमें शादी करनी है या सब कुछ करना है, उनको जबरदस्ती नहीं की जा सकती। लेकिन फिर ध्यान रखना, अगर किसी का गृहस्थ आश्रम में भी जा रहा है, इट्स नॉट अ बैड थिंग अगर वो दान दम और यज्ञ कर रहा है। ये क्लियर समझ में आना चाहिए, नहीं तो वो शुद्ध होता कैसे, वो तपस्या के लेवल पे कैसे आता? समझ में आ रहा है लिंक आपको? ये सारी चीजें देखिए, जब दान दम और यज्ञ गृहस्थों के लिए है और भगवान बोल रहे हैं दैवीय गुण है, तो फिर यानी वो दैवीय गुण से युक्त होकर के उस आश्रम में रह रहे हैं ना भाई। गीता का ज्ञान तो गृहस्थ भक्त को दिया जा रहा है, भले बाकी ब्रह्मचारी पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़े या ना पढ़े, लेकिन ज्ञान तो अर्जुन को दिया जा रहा है। तो मुख्य बात यह है कि भक्त के गुण से युक्त होना चाहिए, किसी भी आश्रम में है लेकिन उसका उसका वो पालन करेगा तो प्रगति करेगा। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि भक्त लोग प्रायः अगर वो परमहंस अवस्था पे नहीं है, मैं थोड़ा गलत बोल गया, परमहंस अवस्था मत से मतलब नहीं, क्योंकि ये भी सब परमहंस हैं, युधिष्ठिर महाराज जी सब, लेकिन ये लोग इस फ्रेमवर्क में काम करते हैं वर्णाश्रम के, ताकि अन्य लोग उनको देखकर भक्ति सीख सके। ये सूक्ष्म बात समझ में आ रही है? आप ये मत कहीं सोचिएगा कि युधिष्ठिर महाराज का प्रेम कृष्ण के प्रति किसी मामले में भी कम है, लेकिन उनका जो उनके द्वारा उन भक्तों के द्वारा भगवान अन्य लोगों को शिक्षा देते हैं। जितना जड़ भरत का भगवान का प्रति प्रेम है, उतना युधिष्ठिर महाराज का प्रेम है, आप कम नहीं कह सकते। या युधिष्ठिर महाराज का जितना प्रेम है उतना ही प्रहलाद महाराज का प्रेम है, प्रहलाद महाराज भी राज्य स्वीकार की। तो इसलिए ध्यान देना चाहिए कि ये भक्त लोग दिव्य स्तर पे हैं, लेकिन वर्णाश्रम में ऐसे कार्य करते हैं ताकि अन्य लोग जो दिव्य स्तर पे नहीं है पूरी तरह, वो उनको देख के उसका अनुगमन करें, फिर दिव्यता की तरफ आगे बढ़े। समझ में आता है ना? ये भक्ति में भी होता है। उसके बाद बड़ा इजी है, मैंने पहले बोल दिया था लेकिन आप समझ सकते हैं, ये दानम दम और यज्ञ जो है वह गृहस्थ भक्तों के लिए। दान का अर्थ है खाने का दान, स्पष्ट रूप से गीता में विष्णु में कह रहे हैं खाने का दान, और जो वस्तुएं खुद के पास हैं और ईमानदारी से कमाई है। इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं है कि पोल्ट्री फार्म खोल लिया, अब जो पैसा आया उसका पाप काटने के लिए दान कर बहुत ज्यादा लोग करते हैं तो ये चीज ठीक है। तो आपने क्या सीखा? दान के तीन एलिमेंट्स हैं, खाने का दान करना चाहिए, अपनी वस्तुओं का दान करना चाहिए, और ईमानदारी से कमाई हुई वस्तुओं का दान करना चाहिए। तो प्राय लोग जो उनका ब्लैक मनी है उसको पाप रहित करने के लिए, वाइट करने के लिए लोग इस प्रकार से दान करते हैं। तो ये नहीं कि अब देखो उसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये कि वो ब्लैक काम, ब्लैक मनी तो आती ही रहेगी तो फिर शुद्ध कहाँ हुआ? वो तो पाप तो कर ही रहा है ना, पाप कर रहा है, अपने पाप के कार्यों को बंद नहीं कर रहा है और सोच रहा है मैं दान दे करके शुद्ध हो जाऊंगा।
एक भक्त है,
बहुत लंबा मत बोलेगा, मैं
नहीं, वो भक्त बनने से पहले वो दारू, दो दारू दुकान, वो दुकान का मालिक था।
हाँ।
अभी वो दो दारू दुकान है, दारू का दुकान दो है उनका।
हाँ।
पैसा आ रहा है, वो बहुत पैसा मंदिर को दे रहे हैं।
यस, तो आप देख रहे हैं कि ये चीज, इससे उसका हृदय शुद्ध नहीं हो रहा है, हो रहा है धीरे धीरे शुद्ध होकर भगवान की सेवा में लग रहा है, लेकिन वस्तुतः उसको वो बुरी आदत, बुरे कार्य त्याग देने चाहिए। देवी गुण जल्दी प्राप्त नहीं कर पाएगा, ये चीज ठीक है। दूसरा है दमह, यानी बाह्य इंद्रियों का कंट्रोल। इसको प्रभुपाद जी बहुत आगे से समझा देंगे, बहुत क्लियरली समझा देंगे, लेकिन दम का अर्थ होता है अपनी बाह्य इंद्रियों का कंट्रोल करना, और श्रम का मतलब होता है अपने मन को कंट्रोल करना। लेकिन यहां पे अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि गृहस्थ आश्रम लाइसेंस है इंद्र तृप्ति करने का, समझ आ रही बात? गृहस्थ आश्रम लाइसेंस है इंद्र तृप्ति करने का, इसलिए बोला जा रहा है कि दम करो, इसलिए दमन करो क्योंकि तुम्हें लाइसेंस मिला है, और लाइसेंस का लोग दुरुपयोग भी कर सकते, इसलिए बोला जा रहा है कि दमन करो। अगर इंद्र तृप्ति भी करनी है तो उसे कंट्रोल्ड वे में करना है। ये प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में और खोल के बताएंगे, ये समझ में आ रहा है क्यों पर्टिकुलरली गृहस्थ आश्रम में बोला जा रहा है, क्योंकि ब्रह्मचारियों को तो सहज रूप से इंद्रियां उनको भगवान की सेवा में लगी है या तपस्या में लगी है, और वानप्रस्थों के संग भी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी को शराब पीने का लाइसेंस दिया जाए, तो यानी कि ये नहीं बोल रहे कि आप सुबह 4 लीटर दोपहर में 4 लीटर ऐसा पीने जा रहा, ठीक है वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन चाहते हो फिर इसलिए एक लिमिटेड मात्रा में शराब पी ली, समझ में आ रहा है? ठीक है, इसमें बड़ा कठोर बोलते हैं भागवत में, जो 4 नवयुगेंद्र में से बोलते हैं कि भाई शादी करना का सुविधा दी जा रही है क्योंकि लोग शादी मतलब इंद्र से इंद्र चाहते हैं, इंद्र तृप्ति चाहते हैं, इसलिए शादी की सुविधा है, लेकिन कोई शादी नहीं करेगा तो उसको पाप नहीं लगेगा। संतान उत्पत्ति करने के लिए सब नियम बताए गए हैं क्योंकि लोगों के हृदय में काम इच्छा है, उसको नियमित करने के लिए बताया गया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचारी रहेगा तो वो कहते देखो तुम शास्त्री का नियम पालन नहीं कर रहे, संतान उत्पत्ति नहीं कर रहे। वस्तुतः उद्देश्य यही है, बहुत स्पष्ट है, आप पढ़िएगा, वस्तुतः उद्देश्य यह है कि अंततः गत्वा व्यक्ति इस इच्छा से मुक्त हो जाए, लेकिन अब बिल्कुल मुक्त नहीं हो सकता तो धीरे धीरे करके उसको मुक्त करने का प्रयास किया जा रहा है, ये सारे नियमों के द्वारा शुद्ध हो जाए। ठीक है, बहुत उसको भी कभी हम चर्चा करेंगे समय में। उसके बाद जो इसके लिए यज्ञ, एक तो स्पष्ट है क्रियाएं जो भगवान की सेवा के लिए होनी चाहिए वो करते हैं, तो यानी कि दान दम और यज्ञ किसके लिए है? गृहस्थों के लिए। स्पष्ट हो गया।
यज्ञ का मतलब,
यज्ञ मतलब कोई भी क्रिया जो भगवान की सेवा के लिए होती है, यज्ञ मतलब जैसे आहुति वाला यज्ञ और बाकी भगवान को भोग लगाना, भगवान की सेवा करना, सारा कुछ जप करना, सब कुछ यज्ञ तो सबके लिए। देखिये यज्ञ तो हर व्यक्ति को करना चाहिए, तो इसलिए जो क्रिया की सेवा के लिए होती है। ओके, ये जनरल टर्म है, ये हम भक्ति के सेंस में सीखते हैं। प्राय लोग जो भक्ति नहीं कर सकते हैं वो लोग देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, इसकी व्याख्या भगवान 3rd अध्याय में करते हैं, विभिन्न प्रकार के यज्ञ। हाँ, यज्ञ कर्म सम्मत भवा, कर्मों से यज्ञ उद्भूत होते हैं। ठीक है, उसके बाद वो ब्रह्मचारी के बारे में बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी पढ़ाई नहीं करते। इस्कॉन के ब्रह्मचारी पढ़ाई नहीं करते। इसमें लिखा है कि 7th अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रह्मचारी जीवन में ही एक इंटरेस्टिंग चीज है। आप क्यों 7th अध्याय बोल रहे हैं? देखिए, आप सब जानते हो कि बचपन में कैचिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, खड़ाखट सीख जाते हैं बच्चे लोग, तो उस टाइम अगर वैदिक ज्ञान उनके चित्त में डाल दिया गया तो उनके लिए सहज होगा आगे के सारे नियमों का पालन करना, ऐसा नहीं लगेगा अरे ये क्यों बोल रहे हैं। वो एक कहते ना हम लोग गीली मिट्टी होती है तो कैसे भी शेप दे दो, तो यंग एज में 5 साल से 20 साल में वो बच्चे ज्यादा कुछ हाउ टू से दैट रिवोल्ट नहीं करते, रिवोल्ट क्या बोल, विद्रोह की भावना नहीं होती, जैसे मम्मी बोल रही पापा बोल रहे हैं वैसे करते,
सीखने की प्रवृत्ति
रहती है। तो उस टाइम उसने पूरा पी गया ज्ञान, अच्छे से बढ़िया से सीख गया, पी गया, तो वो पूरा जीवन उस ज्ञान के आधार पर चलेगा। अगर शास्त्र का ज्ञान एक बार घुस गया कान में, उसको विश्वास हो गया, उसने पालन किया, अगर शास्त्र के विधि को तोड़ेगा भी तो उसे याद है कि वो तोड़ रहा है ना। जैसे मान लीजिए कोई यहां से दिल्ली जा रहा है, अब वो हरिओम ढाबे पे बैठ के, हाँ हरिओम ढाबा हरिओम, अब हरिओम ढाबे पे बैठ के खाएगा तो पक्का उसको बार बार मन में बोलता रहेगा भाई ये तो प्रसाद नहीं है, ये तो भोग है, तो क्योंकि घुस गया है उसके मन में, रोज प्रसाद पाया है इस प्रकार से, तो इसीलिए 7th अध्याय बहुत महत्वपूर्ण बता रहा है, नहीं तो जानेगा नहीं क्या करना है। और आज की स्थिति में तो यही है, किसको पता है मतलब क्या विधि से जीना चाहिए कि हम कर्म बंधन से मुक्त रहे, तो ये क्लियर है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी आश्रम में है उसको बहुत ध्यान पूर्वक के अपना समय निकाल करके शास्त्र पढ़ना चाहिए, ये नहीं कि जब टाइम मिलेगा जब मूड करेगा तब पढ़ेंगे, ये इस आश्रम का नियम ही है, हमें करना ही चाहिए। ठीक है, और ये ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। अब समझ में आ गया उनके लिए यज्ञ क्या है? 7th अध्याय जो है वह ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म मतलब वेद, याद आ रहा है ना, हाँ वेदों को पढ़ना। और वो कहते हैं कि वह वेदों को पढ़ने में फिक्स्ड अप होता है, ना कि वो ध्वनियां जो इंसानों के द्वारा बनाई जाती। तो इंसानों के द्वारा ध्वनियां बहुत सारी होती है, उसको उससे अपने को चित्त को दूर रखता है। प्रभुपाद जिसको बोलते हैं शुद्ध ब्रह्मचारी, हरे कृष्णा के साउंड में अपने मन को लगाता है और वैदिक जो शब्द है उनमें लगाता है, उसके द्वारा चित्त की सफाई होनी चालू हो जाती। और क्यों पढ़ता है तो कह रहे हैं वेद भगवान का साक्षात्कार देते हैं। वेद भगवान से निश्चित है, हमने चर्चा किया था, तो वेद भगवान का साक्षात्कार देते हैं, तो यानी भगवत साक्षात्कार उसका ब्रह्मचारी जीवन से ही शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद वानप्रस्थों के बारे में बात करते हैं। वो है तपस्या, हाँ तपस्या जो है, हाँ तपस्या है, तप जो है वो वानप्रस्थों के लिए है। और ये तपस्या तीन प्रकार की होती है, जिसका वर्णन 18वें अध्याय में है, शरीर से, मन से और वाणी से, तीन। ठीक है, अब फिर से प्रश्न किया जाएगा, वानप्रस्थों के लिए मुख्य रूप से तपस्या क्यों बोली जा रही है?
क्योंकि ये जो
माइक बोलिए, मैंने समझाया था,
क्योंकि जब वो गृहस्थ में आते हैं तो क्या होता है, वहां पे उनको लाइसेंस मिलते हैं इंद्रिय भोग करने का, तो फिर तपस्या करनी पड़ती है उनको, इसीलिए
इंप्रेशंस को साफ करने के लिए अच्छे से, इसलिए फोकस है तपस्या। ठीक है, अब हम लोग ब्राह्मणों के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप शब्द देख रहे हैं श्लोक एक में आर्जवम, तो आर्जवम का मतलब है ईमानदारी। बहुत सुंदर गुण बता रहे हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। वो कहते हैं कि जो श्रद्धालु श्रोता हैं उनसे कोई भी सत्य छुपाया ना जाए। समझ में आया? ब्राह्मण का पहला गुण है आर्जवम। आर्जवम मतलब अगर श्रद्धालु है वो भगवान के बारे में जानना चाहता है, सत्य जानना चाहता है, उसको ना छुपाए। कितना सुंदर गुण है ना। क्या गुण है अब बताइए, आर्जवम का अर्थ क्या है?
जो भगवान के बारे में जानना चाहता है।
हाँ बोलो, बोलो उसमें बोलो, घबरा कर रहे हैं।
उसको बताए
नहीं, उसको बताए ये पूरी बात नहीं है क्या, कुछ छुपाना नहीं,
छुपाना नहीं,
हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, उसके बाद अहिंसा का अर्थ है, देखिए एक और चीज रहेगी इसमें, पूरा बताए जैसा उसने समझा है, जैसा उसने अपने गुरुवर से सुना है वैसा बता दे, पूरा उसको समझा दे। जैसे कि आप देख सकते हैं सुखदेव गोस्वामी गुण देखते कि नहीं, वो कहते हैं जब ब्रह्मांड का वर्णन आता है ऐसा मैंने पूर्ववर्ती आचार्य से सुना है, आपको मैं बता रहा हूं, स्पष्ट गुण देख रहे हैं ना, क्या है गुरुवा स्निग्ध शिष्य से, ऐसे करके ला स्निग्ध शिष्य जो है, जो चिकना शिष्य है, मतलब जो जो ऐसे कोई श्लोक आता है जिसमें बोलते हैं कि गुरु के खुश होकर बताते हैं, जैसा सुना है वैसे यथावत बता देते हैं, उसको चेंज नहीं करते। अब क्या करते हैं लोग बताइए, देखिए जब लोग देखते हैं कि सामने वाले को तो पता है नहीं, तो अब मैं कुछ भी बताऊं उसको तो मालूम नहीं चलेगा कि मैं गलत बता रहा हूं। समझ में आ रहा है, ये ब्राह्मण कर सकते हैं, ये होता है कि नहीं होता? आप बताइए भगवत गीता में शिव बाबा का नाम कहां पे आता है? तो वो तथाकथित ब्राह्मण जो है वो लोग घुमाने के लिए कुछ भी बोल दो, ना तो कुछ पता नहीं है। ध्यान देना चाहिए, हम सोचते हैं कि हम भगवत गीता पढ़ रहे तो हम जैसे समझ रहे हैं वैसे सारे लोग समझ रहे होंगे, ऐसा नहीं होता है। जब लोग साधु के रूप में देखते हैं तो लोग आपकी वाणी पे विश्वास करते हैं, वो ये नहीं देखते कि शास्त्र में क्या लिखा है। 90% लोग तो ऐसे ही होंगे, इसलिए हमारा कर्तव्य ये है कि उनको सही राह पर बताएं कि भाई ये चीज ऐसी लिखी, ये ऐसा का अर्थ है। प्रभुपाद जी ने ऐसा किया कि नहीं किया? जैसा शास्त्र का अर्थ है वैसे प्रस्तुत किया। तब लोग जो है इसे कहते हैं अभिधावृत्ति, और इसके द्वारा लोगों के हृदय परिवर्तित होता है। अभी आप देखेंगे कि जो जैसा हमने इस टीका में पढ़ा है सेम प्रभुपाद तात्पर्य बोल रहे, कोई चेंज नहीं करते। ऐसा नहीं प्रभुपाद सोच रहे थे अरे बाद में अगर वो लोग गीता भूषण पढ़ लिए तो कहेंगे अरे ये तो प्रभुपाद जी तो गीता भूषण से ही बोल रहे हैं। नहीं। अब देखिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी क्या बोलते हैं, मैं पूर्ववर्ती आचार्य के अनुसार ही बोल रहा हूं, और उसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं लेकिन उसका अर्थ चेंज नहीं करते। हाँ, अरे बल्कि यही उस वक्त का गुणगान है कि उसने चेंज नहीं किया। उसमें कौन सा गुण है? आर्जवम का। हाँ भगवत गीता यथारूप जैसा पूर्ववर्ती आचार्य ने बताया वैसे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। बहुत सुंदर बात है, ये याद रखना चाहिए आज जब हम, ये याद इसलिए रखना चाहिए क्योंकि भक्तों का तो एक गुण ही ब्राह्मण का है, इस्कॉन मतलब ब्राह्मण बनाने के कारण। तो जब हम कुछ बोले और हमको नहीं पता है तो स्वीकार कर लेना चाहिए मुझे नहीं पता। परम पूज्य राधा रमण महाराज जी बड़े इस मामले में बड़े अच्छे, उनसे कोई प्रश्न करे और एक बार ऐसे बोले ये प्रश्न तो हमारा भी है हमारा भी ये प्रश्न है, अगर हम नीचे बैठे होते तो हम भी यही प्रश्न करते। तो ये क्योंकि इस लाइक बहुत अच्छी बात है, कितना सुंदर बात है, विचार कीजिएगा, इन गुणों को धारण करने का प्रयास करना चाहिए कि हम कुछ भी बोले हम घुमाए नहीं बातें, सीधे सीधे बोलना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गुण है, ये तो मुझे बहुत आकर्षण किया ये गुण। आर्जवम, अहिंसा का अर्थ है दूसरे के जीव जीवन का जो समय है उसको काटे नहीं, तो स्पष्ट है, समझ में आता है। सत्य का अर्थ है सही सही वाक्य बोलना जैसा उसने देखा है और उसका अर्थ गलत नहीं होना चाहिए। आपने कुछ देखा और उसको सीधा सीधा सही सही बोल देना चाहिए। अब उसमें ये नहीं सोचना चाहिए, मतलब अब कैसे कहते हैं इसको, मसाला नहीं लगाना चाहिए, मसाला 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 आइडिया लगाना चाहिए और मसाला लगा के बोलना, घुमा फिरा के बोलना। सत्य मतलब जैसे आपने देखा वैसे बोल दिया। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि एक बार एक ब्राह्मण गंगा जी में स्नान करने गए कलकत्ता में, सुना आप अपने उदाहरण, पर एक इंग्लिश व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गाली दी, अंग्रेजी में गाली दी, वो ब्राह्मण अंग्रेजी नहीं जानता था, तो उस वो व्यक्ति सम्माननीय थे तो उनने केस ठोक दिया उसके ऊपर। तो इस इंग्लिश अंग्रेज व्यक्ति ने बोला नहीं मैंने कोई गाली नहीं दी, तो उन्होंने बोला नहीं एक ब्राह्मण वहां पे थे उनको बुलाइए। तो ब्राह्मण ने बोला कि हमें पता नहीं क्या बोल रहा था लेकिन वो इतने तेज थे कि जो सुना उन्हें याद हो गया और उसको रिपीट कर दिया। तो उन्होंने कहा ये तो गाली है तो ब्राह्मण लोग की शक्ति रहती थी कि सुनकर याद कर लेते, उनको ये पता नहीं था कि अंग्रेजी है कि मतलब क्या है, वो कल ये बोला था उन्होंने उसको रिपीट कर दिया। तो चेंज नहीं करना। अब देखो ये भी बहुत बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ी बात है कि जैसा है वैसा प्रस्तुत कर देना। इस केस में न्यूज वालों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वो इतना सा होगा जैसे रुई होती ना जो कंप्रेस्ड रुई होती है धुन करके पूरा फैला करके ऐसा भी होगा वैसा भी होगा, तो हम लोग इतना जबरदस्त विश्वास करते हैं उनके ऊपर जबकि वो इस मामले में बिल्कुल गड़बड़ है। इस संबंध में आज मैं महाराज का लेक्चर सुन रहा था, कह रहे थे कि धरती माता सब कुछ सहन कर सकती है लेकिन एक व्यक्ति का झूठ सहन नहीं कर सकती। तो महाराज ने बड़ा अच्छा बात बोली कि बचपन से ही अभ्यास करना चाहिए सच बोलने का। फिर बोला आजकल लोग बचपन से लोग झूठ बोलने का अभ्यास कराते हैं, कैसे, कोई व्यक्ति फोन करता है बोले पापा हैं तो बच्चे को बोलते हैं बोलो बेटा पापा नहीं है यानी बचपन से ही छोटी छोटी बात पे झूठ बोलने के लिए लोग तैयार रहते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पहुंचना है, आप जानते हो कि आप 20 मिनट पहुंचोगे और हम बोलते क्या हम 5 मिनट पहुंच रहे, अभी पहुंच गया, निकल गया, गाड़ी पे हूं तो आप देख रहे हैं कि हमको लग रहा कुछ नहीं हो रहा है लेकिन एक तो पाप चढ़ रहा है और हमारी प्रवृत्ति बन रही है झूठ बोलने की। इसको इंग्लिश में कहते हैं फसाद, मतलब एक घर है उसके सामने का बहुत सुंदर सब कुछ बढ़िया है, अंदर से कुछ सब कुछ बिल्डिंग खराब होगी। ऐसे हम लोग अपने सामने जगत के सामने एक फसाद करते हैं, मतलब चेहरा बना के हम बहुत सुंदर चेहरा बना के रखना चाहते हैं चाहे अंदर से कितना भी गड़बड़ हो। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्य बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ध्यान रखना चाहिए कि कलयुग में इस धर्म के सारे चीज टूट गई है सत्य रह गया। तो सत्य को जो पकड़ लेगा वो निकल जाएगा। भाई 16 माला जो कर रहा है, 4 दिन का पालन कर रहा है वही जानता है, भगवान जानते, तो जो पकड़ लिया कस के उसको वो पार कर जाएगा, बाकी कुछ ना कर पाए, तपस्या ना कर पाए और कुछ ना कर सके, सत्य को पकड़ा तो पार होगा। सत्य ही सारे धर्म का मूल है इसे कहना चाहिए। और भागवत में बोला गया है कि वो ही व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है जो सत्यवान है, अर्थात निर्विलीक है, जो भजन कर रहा है ईमानदारी से वही कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। आप उस श्लोक को देख लीजिएगा, सत्यव्रतम वाला श्लोक है, उसी में बताया जाता है। बहुत अच्छा, ये अच्छा लग रहा है ना आपको, कैसा लग रहा है, ये दिखा रहा है कि दिव्य गुण है हमारे, कि थोड़ा तो होगा तभी तो आकर्षण हो रहा है कि हम सत्य बोलना चाहिए झूठ नहीं बोलना चाहिए ऐसे करके। इस संबंध में एक अच्छा कोटेशन है कि सत्य बोलने में फायदा ये है कि आपको याद नहीं रखना पड़ता कि आपने पिछली बार क्या बोला था, समझ में, झूठ बोलते थे तेरे पिछली बार क्या बोला था वो चेंज तो नहीं कर रहा आज, कई झूठ बोलने पड़ता, याद भी रखना पड़ता पिछली बार क्या बोला था, उसके हिसाब से क्या बोलना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि हमारे संबंध भी बहुत अच्छे होते अगर हम सत्य बोलते हैं। एक और बात ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी हम अर्ध सत्य बोलते हैं। अर्ध सत्य का अर्थ है हमको ठीक ठीक पता नहीं कि वो क्या हो रहा है, आधी बात तो हमने देखी, आधी बात सुनी नहीं, और दोनों को मिला मिला करके जो सुना नहीं वो हमने अपने से जोड़ दिया, जो देखा वो देख लिया, अरे प्रभु जी देखा मैंने उसे करते हुए, लेकिन पूरी बात जान ना जानते हुए दुनिया में बोलना चालू कर दिए। तो इसे कहते हैं अर्ध सत्य। तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए, प्रॉपर समझ करके ही दूसरों को बताना चाहिए। ठीक है, तो हम कौन सा चर्चा कर रहे हैं? सत्यम। उसके बाद है अक्रोध। बहुत सुंदर वो कह रहे हैं कि जब कोई खराब व्यक्ति आपकी निंदा करे तब जो क्रोध आता है उसको अक्रोध सहन कर ले। आपको पता है कि वो खराब व्यक्ति है, अच्छे व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, जो खराब व्यक्ति है वो जब जान रहे हो खराब व्यक्ति है आपकी निंदा कर रहा है सहन कर ले। ये ब्राह्मण का कूड़ा, इस सबसे हमारा तेज बढ़ता है, ब्रह्म तेज बढ़ता है। क्या है अक्रोध? मतलब अब जान रहे मेरी कोई गलती नहीं है, वो नलायक व्यक्ति है, खराब व्यक्ति है, वो आपकी निंदा कर रहा है, उसको सहन करना। ठीक है, त्याग का अर्थ ले रहे हैं कि जब हमारी अपमान हो तो गाली नहीं देना, ऐ कठिन है ब्राह्मण बनना, इतना आसान नहीं है कि नहीं? जिन्होंने ब्राह्मण दिशा ले रखी है उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है कि सारे गुण आने चाहिए, क्योंकि तभी हमारा आशीर्वाद काम करेगा। किसी का भी आशीर्वाद काम करेगा, ब्राह्मण का आशीर्वाद। क्या सीखा आपने त्याग मतलब? त्याग का मतलब ठीक है, क्या कोई आपको पब्लिक में भी गाली दे, गाली वापस दे देना, सहन कर लेना। ये क्षत्रिय गुण नहीं है, क्षत्रिय तो मार देगा उसको खत्म। जो चीज क्षत्रिय के लिए, अब जब देख रहे हैं आपके प्रश्न का उत्तर हो रहा है राजीव कृष्ण प्रभु, जो चीज जो ब्राह्मण के लिए गुण है वो गुण क्षत्रिय के लिए गुण नहीं है। क्षत्रिय को बोले गाली दे देते तो उसको मारना, उसको उसका स्वभाव इस प्रकार से। शांति का अर्थ है मन को संयमित करना, जो मन की बुरी इच्छाएं आती हैं उनके अनुसार कार्य नहीं करना, मन को भगवान में लगाना, तो सिंपल है। अपैशना का अर्थ है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अपैशना का अर्थ है जब कोई व्यक्ति नहीं हो तब उसकी निंदा नहीं करना। कितना आसान होता है ना करना ये, जब कोई व्यक्ति नहीं हो तो हम लोग खूब निंदा कर लेते हैं। कभी सोचिए वो व्यक्ति सामने आ गए तब भी क्या उस प्रकार से निंदा करेंगे? अपैशनम का अर्थ है जब कोई व्यक्ति नहीं है, मतलब यहां पे उपस्थित नहीं, उसकी निंदा नहीं करना। तो ये है दया, बहुत सुंदर। दया का अर्थ है दूसरे व्यक्ति के दुख को सहन ना कर पाना। ठीक है, दया का अर्थ क्या है श्री कृष्ण? दूसरे के सुख को सहन, दुख को सहन नहीं कर पाना। जैसे बोलते ये बड़ा अच्छा है, इस पर विचार करें, जैसे हमें कुछ भूख लगती तो हम क्या बोलते हैं? हम सहन नहीं कर सकते, हम सहन नहीं कर सकते, हमें कुछ दीजिए, हमें कुछ दीजिए। सारे प्रयास करते हैं ना, सहन ना कर पाने का मतलब है उस दुख को अब निवृत्त करने का प्रयास कर सकते। ठीक है ना, एक अच्छा पॉइंट है कि ये सारे गुण एक भक्त में अपने आप भी आ जाते हैं। वैष्णव आप देखेंगे कि अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग सारे कुछ अपने आप भक्त के हृदय में आ जाते हैं, अगर भक्ति ठीक से करता है अपने आप ही वो ब्राह्मण बन जाता है। ठीक है,
यानी कि अगर कोई दुखी है तो उसको,
कोई दुखी है तो उसकी हेल्प करना चाहिए। जैसे हम लोग शरीर में कष्ट होता है तो हम उसको निवृत्त करने का प्रयास कर रहे, उतनी इच्छा होनी चाहिए, उतना प्रयास होना चाहिए, ये सच्ची दया। अलोलुप्त्व का मतलब है लोभ का अभाव। ठीक है, ये तो स्पष्ट है, लोभ नहीं करते, संतुष्ट रहते हैं ब्राह्मण लोग। मार्दव का अर्थ है मृदुलता, मृदु समझते हैं, सॉफ्ट। हाँ, तो कहने का अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति, कोई महान व्यक्ति शरीर छोड़ देते हैं तो ब्राह्मण को या कोई सॉफ्ट वाला हृदय वाला व्यक्ति से दुख होता है। इसलिए आप देखिए कि अर्जुन में गुण है, अर्जुन के जब लड़के चले मर गए थे, क्या नाम उनका, अभिमन्यु, तो सहज था उनके लिए दुखी होना। प्रभुपाद जी भी उसे बोलते हैं अगर मान लीजिए गुरु का शरीर त्याग देते हैं तो एक सहज है कि एक शिष्य के लिए रोए ऐसे करना, इस पर कोई ऐसा नहीं कि ये कोई भौतिक फीलिंग्स है। ठीक है, ओके, बहुत सुंदर है। ह्री मतलब कोई गलत कार्य हो जाए तो शर्मिंदा होना, इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई दैवीय गुण से युक्त व्यक्ति भी कभी कभी गलती से कुछ गलत कार्य कर सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि परीक्षित महाराज गलती से वो सांप फेंक दिए थे तो बाद में बहुत शर्मिंदा हुए थे। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर कोई दैवीय गुणों से युक्त है तो कभी कोई गलती नहीं करेगा। गुणों का प्रभाव आ सकता है उसके ऊपर, वो गलती कर सकता है, लेकिन साधु भी गलती कर सकते हैं, लेकिन गलती के बाद क्या वो उसे खराब लग रहा है? तो खराब लगने का मतलब है उसके अंदर दैवीय गुण बढ़ रहे हैं। और जिनको नहीं खराब लग रहा कहते हैं मैं कहां गलत हूं, मुझसे बड़ा साधु कौन है, सॉरी सॉरी तुम्हें स्पेलिंग पता ही नहीं है, सॉरी ए से शुरू होता है कि पी से शुरू होता है। तो अगर इस प्रकार के भावना है तो फिर वो ठीक नहीं है।
परीक्षित महाराज जो होते तो प्रोविडेंस था ना एक तरह से।
प्रोविडेंस नहीं था, जो परीक्षित महाराज के संग हुआ वो सीधे भगवत भगवान के अरेंजमेंट था।
वही मतलब अरेंजमेंट
प्रोविडेंस अलग है। प्रोविडेंस जब बोलते हैं आप बोल देंगे तो वो है कर्म का प्रावधान, कर्मणा देव नित्रेणा, लेकिन यहाँ पे कर्म के अनुसार नहीं,
मतलब भगवान
की व्यवस्था थी जिसके द्वारा कि भागवत प्रकट हो सके। लेकिन फिर भी बहुत बार भक्तों से गलती हो जाती है ना।
लेकिन जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ तो भविष्यवाणी
होगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये भविष्यवाणी का अर्थ है भगवान के अरेंजमेंट से होता है। अन्यथा जो व्यक्ति 7 दिन तक प्यासा रह सकता है वो थोड़ी सी प्यास से सांप कैसे डाल देगा? कुछ लोग, क्योंकि देखिए खतरनाक हो जाएगा, नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं कि उनकी मुकुट में कलयुग चढ़ गया था, ये सब फिर उनकी जो दिव्य स्थिति है उसको नीचे लेकर जाएंगे। लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कभी कभी जैसे चित्रकेतु तो महाराज से गलती हो गई, यशव जी के प्रति उन्हें बाह्य रूप से कोई अपराध कर दिया, तो वो मतलब कुछ अगर ऐसा अपराध हो जाता है तो भक्त के हृदय में वो जो ले लो तो बहुत उच्च कोटि के लोग हैं, सामान्य भक्तों की बात भी करें उनसे अगर कुछ गलती हो जाती तो अगर हृदय में आ रहा है मुझसे क्यों होगा, ये अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि बहुत बड़ी गलती नहीं है। मान लीजिए आपने किसी भक्त को खराब बोल दिया तो अगर आपके हृदय में आ रहा है कि नहीं ये अच्छा नहीं किया मैंने, या मैंने निंदा कर दी किसी की, अरे नहीं अच्छा नहीं किया, तो मतलब ये अच्छी बात है और ये दैवीय गुण है। ये लाइसेंस नहीं दे रहा हूं मैं लोगों को कि आप गलत काम करो, कहीं गलत हो जाए तो फिर ये कुछ मत छोड़िए, आप कुछ मत सोचिए ज्यादा। भगवान का फूल माला है, उससे पाप पड़ गया तो अरे अरे तो अच्छा नहीं हुआ मेरे से, ये बात है। तो ये एक दैवीय गुण है,
तो स्वीकार कर लेना गलती,
स्वीकार कर लेना और क्या, ये अच्छी बात नहीं, मैं उसको इंप्रूव करने का प्रयास करना, ठीक है। ये हिरी शब्द है। अचापल मतलब जो व्यर्थ के कार्य हैं उनका अभाव। तो ये 12 गुण जो हैं वे ब्राह्मणों के हैं। अचापल मतलब अचापलम था ना, अचापलम, अचापलम का मतलब है मार्दवम हिरिर अचापलम, मतलब जो फालतू के कार्य हैं उनको नहीं करना। प्रभुपाद उसको बोलते हैं संकल्प, मतलब अच्छे कार्यों में लगे रहना, संकल्प ले लिया कि गलत कार्य नहीं करने। अब देखिए प्रभुपाद जी कितने सुंदर बोले हैं, 16 माला करो, 4 नियम का पालन करो। तो 4 नियम का पालन करना मतलब फालतू के कार्य नहीं करना, तो ये ब्राह्मण का गुण है। और प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में स्पष्ट बोलते हैं कि जो 16 माला कर रहा है, 4 नियम का पालन कर रहा है, इसी से सारा ब्रह्म तेज आपके पास आएगा, जो आप कुछ बोलेंगे तो लोग प्रभावित होंगे, बड़ा स्पष्ट प्रभुपाद बोल देते हैं इसमें, बहुत अच्छा। तो एकदम दृढ़ता से 4 नियमों का पालन करना और 16 माला का जप बढ़िया से करना। उसके बाद क्षत्रिय के गुणों के बारे में होगा। तेज का अर्थ है जो अपने से हीन व्यक्ति है उससे आप हारे नहीं। आपको याद हो जब अर्जुन आ रहे थे, भगवान जब चले गए थे तो बहुत दुखी थे, तो युधिष्ठिर महाराज जी प्रश्न करते हैं क्या किसी नीचे वाले व्यक्ति ने तुमको हरा दिया इसलिए तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। तेज का अर्थ क्या है, जो हमसे हीन व्यक्ति है उससे हम हारे नहीं, ठीक। क्षमा जो है वह है अगर कोई नीच व्यक्ति हमारा निरादर करता है फिर भी उस पर क्रोध न करना बावजूद इसके कि वो क्रोध कर सकते हैं। दोनों में अंतर है, ब्राह्मण की दंड देने की शक्ति नहीं है उसके पास, एटलीस्ट फिजिकली नहीं है, तो अरे छोड़ो क्या करना से वो सहन कर लेते हैं। क्षत्रिय के संग क्या है, अगर किसी ने अपमान किया है और उसको वो दंड दे सकते हैं तो भी वो छोड़ देंगे, जैसे परीक्षित महाराज दंड दे सकते थे ना उसको, क्या नाम था, शमिक ऋषि के लड़के को, लेकिन उन्हें छोड़ दिया उसको, और बल्कि यहां तक भी शक्ति थी कि वो जो शाप था उसको भी वो निरस्त कर सकते थे, लेकिन ना तो भगवान से प्रार्थना की कि अरे मैं इतना बड़ा भक्त हूं और आप इतना बड़ा मैनेज किया और अब मेरे पर शाप लग गया, ना कुछ भी नहीं किया, सहन कर लिया। एक बार आपको याद आ रहा चित्र की तुम्हाराज का, उनके पास इतनी शक्ति थी कि पार्वती जी को शाप दे सकते थे, लेकिन सहन कर लेते हैं। मैं खाली भक्तों के गुण को बता रहा हूं कि भक्तों में भी इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, धृति का मतलब है, हाँ धृति का बहुत सुंदर मतलब है, जब हमारी इंद्रियां और शरीर थक जाए उनको शक्ति प्रदान करना। मत अब समझ सकते हो, जब युद्ध हो रहा है तो आदमी को थकान होगी, थकी अवस्था में भी युद्ध करना ये एक गुण है क्षत्रियों का। ठीक है, उसके बाद वैश्यों का है, वैश्यों का बहुत इजी है। शौचम देख रहे हैं शब्द, शौचम कौन सी लाइन में है, पहली लाइन में है, पहले श्लोक में है कि दूसरे श्लोक में है, तीसरे श्लोक में, इसीलिए जानबूझ के पूछ रहा था मैं, श्लोक दिखाई पड़ रहा है। तो शौचम का अर्थ है ओके, जब वो क्या कर सकते हैं उसको, व्यापार कर रहे हैं तो उसमें बेमानी नहीं करें, कालाबाजारी नहीं करें। और अद्रोह का मतलब है दूसरों के ऊपर अस्त्र शस्त्र ना उठाएं, ये वैश्यों का कार्य नहीं है, ये किसका कार्य है, ये क्षत्रिय का कार्य। तो ये अद्रोह का मतलब है लोगों से लड़ाई झगड़ा नहीं करें, ये वैश्यों का कार्य नहीं है। और उसके बाद शूद्रों का कार्य है न अति मान्यता, मतलब अपने को बहुत पूज्य नहीं मानना। आप देखेंगे कलयुग में पूरा उल्टा हो गया है, हमें रिजर्वेशन दीजिए, हमें ये दीजिए, हमें वो दीजिए और सब कुछ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि धन आने के बाद करोगे क्या। अगर शूद्र के पास बहुत अधिक धन आएगा तो ऐसा नहीं कि वो अब मंदिर बनाने लग जाएंगे, एटलीस्ट भगवान का मंदिर नहीं बनाएंगे वो। तो फिर होगा ये कि अब पहला चीज क्या होगा, इंद्र तृप्ति करेंगे, फिर उससे और नरक में जाएंगे। तो किसके पास धन होता है ये देना, भगवान इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अब वो इस संबंध में छोटा सा फुटनोट है जो महाराज ने दिया है, इसमें वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी भी गुण से प्रभावित हो सकता है, मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय करके कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर वो वर्ण और आश्रम का पालन करता है उस गुण के अनुसार, मतलब अगर क्षत्रिय क्षत्रिय का कार्य करता है, ब्राह्मण ब्राह्मण का कार्य करता है और वैश्य शूद्र अपने अपने कार्य करते हैं, उन गुणों को करते हैं, तो वह उसका दिव्य स्वभाव बोला जाता है और वह मुक्ति की ओर अग्रसर हो रहा है। देखिए सारे लोग ब्रह्मचारी बनकर के भजन नहीं कर सकते, तो इसलिए प्रभुपाद जी चाह रहे थे कि वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था हो। आपको इसमें कुछ स्पेशल नहीं लगा, स्पेशल ये है कि जो जिसका स्वभाव है वो उसके अनुसार कार्य करे, उस गुण को देखे जो वर्णाश्रम के साथ होना चाहिए और उसका अनुशीलन करेगा तो क्या होगा, वो उसका दिव्य स्वभाव है। जैसे मान लो कोई शूद्र है तो अगर वो नम्रता से सेवा कर रहा है तो वो उसका दिव्य स्वभाव है और वो मुक्ति की तरफ अग्रसर हो जाए। ये चीज इसी कारण से मैं श्लोक को चर्चा कर रहा हूं, जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण की तरह कार्य करे और क्षत्रिय क्षत्रिय की तरह कार्य करे। अर्जुन को इसीलिए भगवान बोल रहे हैं कि तुम ब्राह्मण बनने का प्रयास कर रहे हो, ये तुम्हारे लिए दैवीय स्वभाव नहीं है। समझ में आ रहा है?
हाँ, यस। ये सारी क्वालिटीज हैं, लाइक ये ऑलरेडी होती है व्यक्ति के अंदर या फिर इसको इनबिल्ट करना पड़ता है?
देखिए आत्मा की बात करें तो आत्मा में तो सारे अच्छे दिव्य गुण हैं, लेकिन अगर हम बद्धात्मा की बात करें तो बद्धात्मा अनादि काल से अनेक अनेक प्रकार के संस्कारों से युक्त है, तो ये सारे गुण उस कंटेक्स्ट में बोले जा रहे हैं। एक बद्धात्मा में क्या क्या गुण होने चाहिए, दिव्य गुण, ये बताया जा रहा है। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य शूद्र है, आत्मा इनमें से कौन सी है?
अगर हम चाहें तो ये जो बाकी जो गुण है अगर हम ट्रेनिंग खुद की करें तो हो सकता है कि हम क्षत्रिय के भी करने लगे,
yes.
हो सकता है हम शूद्र के भी करने लगे,
yes.
तो फिर ऐसे में कैसे पता चलेगा हम क्या हैं?
इसके लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। पहले जमाने में लोग गुरु के पास जाया करते थे और देखते थे कि उस बच्चे में कौन से गुण हैं। आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है, इस संबंध में एक कथा बताऊंगा, उपनिषद की कथा है। उसमें लड़का गया गौतम ऋषि के पास और ने बोला कि मैं आपसे ट्रेनिंग प्राप्त करना चाहता हूं। तो उन्होंने बोला कि आपके पिता कौन है? बहुत अच्छा उत्तर है ना, प्रश्न है, पहले तो आपको बोला यहां भी आजकल लिखते ना फादर्स नेम मदर्स नेम। तो उसने कहा मुझे नहीं पता, तो आप माँ से पूछ के आओ। तो माँ ने बताया कि मेरा संग बहुत लोग संग हुआ, मुझे नहीं पता तुम्हारे पिता कौन है। तो अब जब वो वापस आता है गौतम ऋषि के पास, वो बोलता है कि मेरी माँ को भी पता नहीं है कि मेरे पिता कौन है। तुमने कहा ठीक है तुम ब्राह्मण हो, क्योंकि इतनी बड़ी बात बोलना ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, आपको बहुत आसान लग रहा होगा कि बोल सकेगा, बताइए इस प्रकार से। तो उसने समझ गया कि यस क्या है श्लोक, यस्य लक्षणा प्रोक्ता, जैसे लक्षण दिखते हैं वैसे गुरु उसकी ट्रेनिंग देते हैं। तो सभी की ट्रेनिंग जरूरी थी, ब्राह्मण की क्षत्रिय की वैश्य की, वो गुरु देखते थे कि उसके अंदर क्या प्रवृत्ति है। ये गुरु का कर्तव्य था, ठीक है ना? ओके, एक और बात बोल रहे हैं कि अगर किसी एक आश्रम के अन्य गुणों के बारे में नहीं बताया गया है तो मतलब ये मुख्य गुण है। जैसे न अति मान्यता शूद्र का एक मुख्य गुण है, अन्य गुण भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है अब हम सम्मान की इच्छा नहीं रखते लेकिन काम कुछ नहीं करेंगे तो काम भी करना जरूरी है लेकिन ये एक मुख्य गुण है, सारे काम करो लेकिन न अति मान्यता। और आप देख सकते हैं स्ट्राइक हो रही है, किस लिए होती है? रोज ही स्ट्राइक होती रहती है, लोग हमें हमारे और अधिकार दीजिए, काम नहीं करना चाहते हैं और दाम पूरा लेना चाहते हैं। और सारे गुण जो है भागवत में और वर्णन किया गया, हर आश्रम के क्या गुण हो सकते हैं। अब मेरे को और भी समझ में आ रहा है क्यों भागवत में वर्णाश्रम को रखा गया, क्योंकि वस्तुतः ये व्यक्ति को मुक्त होने की तरफ प्रेरित करते हैं, भले सीधे भागवतम का भगवत धर्म का अनुशीलन ना कर सके। तो ये ध्यान देना चाहिए कि भगवत धर्म इस पर आश्रित नहीं है। भक्ति करके व्यक्ति चाहे पूरे जगत का द्रोही हो, इन कोई पूरे असुर संपद से युक्त हो, तो भी वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन सकता है। जैसे आप कई उदाहरण दे सकते हैं, दिति माता तो मारने की चाहती थी इंद्र को, फिर भी भगवान की भक्ति करके वो शुद्ध हो गई।
ये सपोर्ट करते हैं,
ये निश्चित रूप सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर भगवत भगवान की भक्ति कर रहा है तो फिर ये सारे गुण अपने आप आ जाते हैं, ये भी देख लेना चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं कि क्षत्रिय के गुण आए, ब्राह्मण के गुण जरूर आ जाते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि क्षत्रिय के गुण भक्ति करने से आ जाते, ब्राह्मण के गुण जरूर आ जाएंगे। आप देख लीजिएगा अपने चित्र में, ऐसा नहीं कि आप तलवार चलाना सीख जाएंगे अब लेकिन ब्राह्मण के गुण तो, क्योंकि वो सत्वगुणी गुण है, वो जरूर आ जाते हैं।
मेरे दिमाग में लीडर्स आर मेड नॉट, मतलब लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड,
नहीं ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन ये ऐसे बात भी नहीं है पूरी तरह से, है भी और नहीं भी है। लीडर्स आर बोर्न का अर्थ है क्षत्रिय है वह पहले जन्म के संस्कार के अनुसार उसे जन्म लेता है, ये सत्य बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती, शुद्ध नहीं हो सकता व्यक्ति, नहीं तो फिर क्यों लिखा हुआ है कि एकदम। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, लक्का हीरा जो हरिदास ठाकुर जी को गिराने के लिए आई थी, वह इतनी बड़ी वैष्णवी हो गई कि महान महान भक्त उसका संग प्राप्त करना चाह रहे। तो भक्ति का ऐसा स्वभाव है कि इस पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है।
भगवान भी तो ट्रेनिंग लेने के लिए
वो तो भगवान तो लीला के लिए करते हैं, भगवान को ट्रेनिंग जरूरत है ना, कहेंगे आप मुझे क्षत्रिय बनाओ, मैं वैसे था दूध बहुत बेच लिया क्षत्रिय बनने के लिए ट्रेनिंग लेने के लिए, ऐसा नहीं। भगवान तो लीला कर रहे ना, एक ही दिन में धड़ धड़ करके सब सीख जाते हैं, ऐसा तो ना, वो तो लीला चल रही है। एक बात इंपॉर्टेंट है जो आपकी बात थी, वो उसमें कुछ सपोर्ट हो रहा है। आचार्य बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति पहले पुण्य किया है वह पुण्यात्मा होगा, जो व्यक्ति पाप कर रहा है वह पापी होगा। तो एक दृष्टि से देखा जाए जो कुछ लोग अच्छे गुणों से युक्त होते हैं, और ये बात आपकी सही है क्योंकि इसमें लिखा है देव अभी जाता से पार होता, तुम सॉरी आगे जाके भगवान बोलते हैं कि तुम जैसे जन्मे हो तो सारे देवी गुण तुम्हारे पास हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है, पिछले जन्मों के संस्कार है, तो कहीं ना कहीं तो ट्रेनिंग हुई है ना। मान लीजिए किसी के पास वो गुण नहीं भी है लेकिन ट्रेनिंग के माध्यम से, संस्कार के माध्यम से, दशविध संस्कार जो बोले जाते हैं, संस्कार 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 के द्वारा व्यक्ति सफाई होती है उसकी। संस्कार का मतलब भी मार्जन होता है, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि ऐसा गुण बहुत सुंदर है, ये बृहदारण्यक के उपनिषद का बोलते हैं, पुण्य पुण्य न कर्मणा भवति पापः पापेन। जो व्यक्ति पुण्यात्मा है पुण्य कार्य जो है वो पुण्य कार्य को प्रेरित करेंगे, और जो पाप कार्य है वो पाप कार्य को प्रेरित करेंगे। लेकिन आप सोचेंगे तो फिर जो पापी व्यक्ति उसका ब्रेक कहां पे आएगा, भगवत संग से। बहुत महान पापी व्यक्ति भी है, कदाचित भगवान के भक्तों का संग कर लिया तो वहीं से उसकी पुण्य चालू हो जाता है, फिर आगे जाकर वो और पुण्य कर्म करने लग जाता है। ये समझ में आ रहा होगा शायद, ठीक है। हमसे सारे लोग कौन सा ब्राह्मण परिवार में थे, ये ब्राह्मण गुणों से युक्त थे, लेकिन भगवान के भक्तों का संग करने से पाप छोड़ दिए और भगवान की भक्ति में लगे। तो इस संघ का मेन बात होती है, संघ के द्वारा ही ब्रेक आ सकता है, अन्यथा साइकिल टूटने वाली नहीं है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट बोलते हैं कि ये जो संपदा है वो उन लोगों के पास है जो देवता है, अर्थात जो भगवान का आदर करते हैं। जो भगवान का आदर नहीं करेगा वह व्यक्ति इन सब गुणों से युक्त नहीं हो सकता है। अब लास्ट वो पॉइंट बोलते हैं कि इन गुणों से युक्त व्यक्ति की योग्यता होती है ज्ञान और भक्ति की। जो इस प्रकार का व्यक्ति गुणों से युक्त हो, भगवान भी गीता में बोलते हैं जो तपस्या से युक्त हो, जो शुद्ध जीवन जी रहा हो, उसको ये ज्ञान दो। तो एक तरह से कह लीजिए कि भाई ग्लास क्या पानी है, नहीं है, लेकिन ग्लास चाहिए पानी धारण करने के लिए। तो खैर फिर मैं बात को रिपीट करके रुकूंगा कि ऐसा नहीं है कि अगर दिव्य गुण नहीं है तो व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति करने की एकमात्र योग्यता है भक्ति करने की इच्छा, और ये भगवान के भक्तों के संग में जागृत हो जाती है। ये डिपेंड नहीं करता है कि इसमें गुण है कि नहीं, आप पहले चेक कीजिए। हरे कृष्ण मंत्र कोई भी बोल सकता है, जैसे बोलेगा भक्ति करेगा तो अपने आप सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन अगर इस प्रकार के गुण होंगे तो आसान होगा भक्ति को स्वीकार करना, है कि नहीं। कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, सारे गलत कार्य कर रहा है, उसको भक्ति देने में थोड़ी मुश्किल होती है, एटलीस्ट स्वीकार करने में मुश्किल होती है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर भक्ति स्वीकार कर ली तो वो शुद्ध हो जाएगी और अपने आप ही सारे गुण भी प्रकट हो जाएंगे। आज हमारे पास समय नहीं, प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम लोग फिर आगे चर्चा करेंगे। तब आप एक काम कर सकते हैं कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य को आप पढ़िएगा, तो जो हमने चर्चा करी है उससे आप जो आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे तो उसको देख करके आसानी से समझ में आ जाएगा, और देखेंगे कैसे श्रीला प्रभुपाद जी एकदम बलदेव विद्याभूषण जी की टीका को लेकर के एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा और खोल खोल के समझा देंगे। ठीक है, विल स्टॉप हियर। श्रीला प्रभुपाद की जय।